सूरत अल अहज़ाब की एक आयत तो मैंने शेयर कर दी, दूसरी भी इस पे नोट कर लीजिए, आयत नंबर 59 है सूरत अहज़ाब की। देखिए अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं, और मैं कहती हूँ हम ये आयतें कुरान से नहीं निकाल सकते।
أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما।
अल्लाह अपने नबी से कहते हैं, या अय्युहन नबीयू, ए नबी कुल कह दीजिए, ली अज़वाजिक बीवियों को, हम कहते हैं शुक्र है बीवियों का नाम आ गया, नहीं वह बनातिक बेटियों को, चलो हम कौन सी नबी की बेटी हैं, नहीं वह निसाइल मोमिनीन और मोमिनों की औरतों को, ये तो आप पर में है ना, क्या करें, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, चाहिए कि अपनी ओढ़निया अपने ऊपर लगाएं, लड़ लटकाएं। और जलाबीब जिलबाब से है, और जिलबाब अरबी में उस चादर को कहते हैं, आप डिक्शनरी में जाके खोल के देख लें, जिलबाब कहते हैं ऐसी चादर जो औरत सर पे डाले जब तो उससे लेकर उसका पांव तक छुप जाए। इसके लेने देने के तरीके फर्क हो सकते हैं, लेकिन जिलबाब ऐसे कि सर से पांव तक एक औरत अपने आप को ऐसी औरत बनाकर जाए कि जिससे पता चले जालिका अदना, ये बात ज्यादा करीब है इस बात के अयो रफना के वो पहचानी जाए। हम कहते हैं पहचानी जाए, हमारे जहन में आता है पर्दा इसलिए करो कि पहचाने ना जाओ, यही जहन में आता है ना, यहाँ के पहचानी जाओ, सूरत नूर में भी यही इसी तरह का अंदाज है, क्या पहचान हो कि तुम मुसलमान औरत हो, बाहया औरत हो, खानदानी औरत हो, तुम हर एक को अवेलेबल नहीं हो, ये पहचान करके बाजार में जाए, जो बाल खोल कर खुशबुओं के झोंकों में और लंबी एड़ियां पहन कर लड़कियां जाएंगी, क्या वो पहचानी जाती हैं कि वो मुसलमान है। और किसी एक बाजार से जरा आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर तो करा दें, अगर आपके ख्याल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आते हैं, कि औरतें जिस हाल हुलिये में बाजार में, क्या अल्लाह के नबी पहचान सकते हैं कि ये मेरी बेटियां और ये मेरी बहनें और ये मेरी उम्मत की बेटियां, तो कहा कि योरफना फला युज़ैना, और वो अजियत नहीं दी जाएंगी, वकान अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह तला बख्शने वाला और मेहरबान है। तो जितना ज्यादा इस पे गौर करेंगे आपको समझ आएगा। और आप देखिए ये किन औरतों को हुक्म दिया जा रहा है जो अपने माशरे की बेहतरीन औरतें थी। लोग कहते हैं हमारी नीयत तो अच्छी है ना, भाई आपकी अच्छी है उनकी तो नहीं अच्छी जो आपको देख रहे हैं, आप सारे भी अच्छे हैं तो क्या शैतान अच्छा हो गया। सहाबा का दौर था, सहाबियात थी जिनकी गवाहियां कुरान अपने जिसकी जिनकी पाकी की गवाहियां कुरान में अल्लाह उनके बारे में नबी को कह रहा है कि तुम ऐसे करो और वैसे करो। औरतों की सरदार होंगी जन्नत में हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, नबी सल्लम की लाडली बेटी, आती तो आप उनका माथा चूमते, उनको प्यार करते, उनको जब ये कहा जा रहा है बनाती का, तो किसी और को क्या कहें। लेकिन आज हमारा हाल वही है, वो अकबर इलाहाबादी का आपने नाम तो सुना होगा ना, कि देखी जो कल चंद बेपर्दा बीबियां, अकबर हमीयत कौमी से गड़ गया, पूछा कि तुम्हारा वो पर्दा क्या हुआ, कहने लगी वो अकल पे मर्दों की पड़ गया। और यकीन करें बात तो कड़वी है, लेकिन आज तो वाकई मुझे बास अवत इनको देख के लगता है कि इनके मर्द किधर हैं, इनके बाप जिंदा है, इनके शौहर जिंदा है, ये ऐसी आजाद फिर रही हैं जैसे शुतर बेमुहार औरतें। किसी औरत का अपने ड्राइंग रूम में या अपने बेडरूम में होना और घर के बाहर होने में कोई फर्क नहीं दिखता, हालांकि यहाँ ये बात समझिएगा थोड़ा सा पर्दे का मौजू नहीं है, लेकिन मर्दे का मौजू तो आ रहा है बीच में। देखिए औरत घर से बाहर जब निकलेगी ना, यहां से जब मैंने अपने बाहर जाना है ना, तो मैं इवन इस स्कार्फ में नहीं जा सकती। जिलबाब कहते हैं ऊपर का कपड़ा, कुछ ना कुछ ऊपर पहनेगी, जिसको आप आउटर लेयर कहेंगे, आप उसको अबाया कह दें, बुरका कह दें, टोपी वाला बुरका कह दें, चादर कह दें, ये जो हमारे मैचिंग कपड़ों की चादरें होती हैं पाकिस्तान में अक्सर लॉन के और कॉटन के जोड़ों पर, उस पर भी नहीं जा सकते। अगर बाहर उसमें जाना है तो घर में आप उतारे उसको, फिर इतना वाज़े हुक्म है। हम फैशनेबल किस्म के भाई और अपने फैशनेबल किस्म के पर्दे पहन के बाहर जाएं, जिलबाब है ही बाहर जाते हुए ऐसे, इस तरीके से आप करिए। और आपको होता है कि आज वेस्ट में जहां आप बैठे हैं वहां डर किस बात का, लोगों को एक घस भी नहीं लगता कपड़ा, इस टुकड़े से डरते हैं, आज पूरा वेस्ट इस निकाब से डर रहा है, ये क्या है, ये कल्चर है, उनको यूज़ी ना और यूरोप ना, इसका डर है। फिरौन को खतरा था ना कि तरीका तुमल मुसला के तुम्हारे मिसाली तर्ज अमल को मूसा बदल देगा, आज वेस्ट को ये खौफ है। अल्लाह की कसम आप और मैं जितनी मुसलमान बहनें हैं विदाउट एनी इमोशंस, बगैर कोई जज्बाती बातें की हैं, बगैर किसी के खिलाफ कोई बात की है, बगैर किसी से डरे, بغیر کچھ کیے اگر ہم اپنے اسلام کے اظہار میں باہر آ جائیں تو لوگ کانپنے لگتے ہیں. ہمیں کسی کو تھریٹ نہیں کرنا, کوئی کہتا ہے اتارو اتار دو, آگے جا کے پھر پہن لو. ریئیکٹ ہمیشہ یاد رکھیں, آپ جتنا دبتے ہیں اتنا دبایا جاتا ہے. جب میرے رب نے مجھے حکم دیا, ایک عورت ننگی پھر رہی ہے, اتنے بڑے بل بورڈز لگے ہیں آپ کے ہر بس اسٹاپ پہ, دیکھے گندی عورت ننگی عورتیں کھڑی ہیں, اس سے کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتا لوگوں کو. ہمارے ینگ بچے انہیں بس اسٹاپ پہ کھڑے نہیں ہوتے جہاں ننگی تصویریں لگا کر چوزیں بیچتے ہیں, اس سے ڈسٹریکشن نہیں ہوتا. تو میرے اس نقاب سے, میرے اس حجاب سے کسی کو کیا ڈسٹریکشن ہے؟ میری آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں, میں اپنا منہ دکھاؤں نہ دکھاؤں آپ کو کیا لگے. میں صرف آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں, میں کچھ جوش نہیں دلا رہی اس بات کا. آپ کو جس دن اس چیز کا یقین آ جائے گا, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں چھوڑے گی. آج سے 50-60 سال پہلے حجاب ایک مسئلہ تھا, پھر کچھ عورتوں نے قربانی دی, انہوں نے کہا ہم تو کریں گی. آج حجاب کو تو 98% نان مسلم مان چکے ہیں, اب نقاب کا ایشو ہے. تو آئیے میں آپ ذرا اس میں اپنے حصے ڈال جاتے ہیں. اللہ کے لیے نہیں پہننا اس لیے پہن لیجئے, ہلکے رنگوں کے پہن لیں, نہ چڑ چڑائیں نہ دکھی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جہاں تک اپنا حق لینے کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائیے, یہ آپ کا حق بنتا ہے, کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. اچھے طریقے سے بات کریں. آپ کو تو کہ امریکہ میں کسی کے ریلیجیس فریڈم پہ ہاتھ اٹھانا بہت بڑی سزا ہے اس کی. آپ کہہ دیں یہ میرا مذہبی حق ہے, کوئی بندہ آپ کو جاب سے نہیں نکال سکتا. تو آپ کو مجھے اپنا حق منوانا ہوگا, لیکن اس کے لیے آپ کے میرے اپنے اندر اس بات کا یقین ہو میرا رب بڑا ہے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, یہ دعا میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں, آپ لکھ لیں میرے سے لے کے. اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی کا بھی خوف دل میں ہو, گھبراہٹ ہے, آپ انٹرویو پہ جا رہے ہیں گھبراہٹ ہے, رشتہ دیکھنے دکھانے جا رہے ہیں گھبراہٹ ہے, کوئی بھی کام ہے, آپ یہ دعا پڑھیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. فرمایا اللہ آپ کو سامنے والے بندے سے بے نیاز کر دے گا. آپ امیگریشن سے گزر رہے ہیں, پولیس ہے, پیار سے بھی پولائٹ بھی نائس, وہ اللہ کی ذات ہے. یہ ساری دعائیں مل جائیں گی آپ کو بعد میں انشاءاللہ, کتابوں میں موجود ہیں, لیکن پہلے آپ اپنے آپ کو یقین کا رکھیں. آپ کو تھا کہ ایک انگریز تھا, تو اس نے ایک امریکن پارلیمنٹ میں مسلمان معاشرے میں اپنا کلچر عام کرنے کی ترکیب اس طرح سے بتائی کہ کپڑے کا ایک ٹکڑا ایک ہاتھ میں پکڑا اور دوسرے میں قرآن پاک پکڑا, اور اس کپڑے کے ٹکڑے کو قرآن پہ چڑھا دیا. تو جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے کہنے لگے یہ کیسی ترکیب ہے. اس نے کہا یہ مسلمان عورت کا حجاب ہے جسے اس کے چہرے سے کھینچ کر مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید پر چڑھا دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور آج اب دیکھیے مسلمانوں نے قرآن کو تو غلافوں میں رکھا ہوا ہے اور اپنی بہو بیٹیوں کو کھلے عام رکھا ہوا ہے. یہی ترقی تھی جو یورپ چاہتا تھا, ہم نے کر دی. یہ آپ کے میرے اپنے لیے بات ہے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہمیں چاہتی. دوسرے تو بعد میں پابندی ڈالتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں کوئی پابندی ہے تو کتنی پہنتی ہیں؟ پابندی ہے کوئی آپ کے اپنے ملکوں میں؟ یہ تو ہماری اپنی بہنیں اس کو بوجھ اور پابندی سمجھتی ہیں, کیونکہ جو ایسا بایا حال حلیہ اچھا کر لے دین کے مطابق تو اس کو وہ کہتے ہیں یہ دقیانوسی ہے, یہ قدامت پسند ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے اور یہ ماسی ہے. تو جو خواتین بازار کی شوقین ہوتی ہیں یاد رکھیے وہ اکثر پردے کو بوجھ سمجھتی ہیں. پردے میں بازار میں جانا لگتا بھی مشکل ہے, ناک بند ہوگا, دم گھٹے گا, اور جب وہ ادائی نہیں دکھانی تو چیزیں تو ٹو دی پوائنٹ لے کے دے کے آ جانا. تو لہٰذا اس چیز کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. آپ کو پتا ہے کہ ابن عثیمین آج کے دور کے اللہ نے مجدد کہہ لیجئے, یہ بہت بڑے عالم تھے, ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے, تو یہ سعودی عرب کے ممتاز عالم دین تھے. انہوں نے فیشنیبل نقاب کو حرام قرار دیا, کہتے ہیں اس میں عورت مزید کشش والی دکھتی ہے, مثلا موتیوں والے ابائے چمک رہے ہیں, ستاروں والے, اور نقابوں کے اوپر بھی موتی ستارے لگے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ اس میں تو اور بھی عورت اپنا دکھاتی ہے, لیکن میں اس وقت آپ کو اس بارے میں نہیں کہتی. ٹھیک ہے ایک عورت ہے وہ کچھ نہیں پہنتی, وہ فینسی ابایا تو پہننا شروع کرے, یہ منزل نہیں ہے, راستہ تو ہے نا, اٹس فائن. ایک وقت آئے گا آپ کو خود شرم آئے گی. آپ دیکھیں کہ سب سے سادہ اور سب سے جو آپ کہہ لیجئے لیس توجہ والی چیز ہے وہ باہر کا ابایا ہے. سم اچھا کوئی ابایا اگر ہے تو اس کو ڈریس بنا کے گھر میں پہنے, آپ کسی دعوت میں پہن لیں اس کو ڈریس بنا لیں, لیکن اس میں باہر جائیں گے تو وہ پھر ایک فتنہ بنے گا. تو یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہیں, لیکن بہرحال پھر واپس ہم آتے ہیں اپنی شاپنگ اور بازار پہ کہ جس حد تک رہ سکیں اپنے آپ کو پردے میں رکھیے. تیسری چیز, تیسرا اصول اپنا بنائیے کہ بازار جانا بھی پڑے تو نظروں کو جھکا کے جائیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد اور عورتیں دونوں کو قرآن پاک میں فرما دیا سورت نور کی آیت 31 اور اس سے آگے کی ہے، وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اس سے پچھلی آیت جو ہے نا 30 آیت، اس میں مردوں کو کہا گیا کہ کُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، نظروں کو جھکانا، نظروں کے راستے شیطان کا تیر چلتا ہے. اس کے بارے میں سورت مومن کی آیت 19 میں آتا ہے، يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، کہ اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو سینوں میں چھپا ہوا ہے. تو مردوں اور عورتوں دونوں کو اپنی نظروں کو جھکانا چاہیے. بازاروں میں جانا، آنکھیں مٹکانا، مردوں کو بھائی کہنا اور یہ کہنا، اور بے تکلفی کا انداز، اور سوچنا یہ کہ ہم سستا لے آئے ہیں. کتنا سستا لائے؟ مثال ہے، آپ نے 100 روپیہ کم کرا لیا تو اپنی عزت بیچ کے آگے، گناہوں کی پٹاری اپنے سر پہ رکھ لی ہے. امام ابن عثیمین بھی اس پہ بھی کہتے ہیں کہ نیچی نگاہ رکھنے والے 3 پاکیزہ اور اعلیٰ اوصاف کی حلاوت ضرور محسوس کرتا ہے. یہ حدیث ہے، اس کا خلاصہ بتاتے ہیں کہ جو مرد یا عورت اپنی نگاہیں جھکائے گا، کیونکہ یہاں بھی ایک بات یاد رکھیے کہ بعض عورتیں نقاب تو کر لیتی ہیں، حجاب بھی کرتی ہیں، لیکن نظریں پٹک پٹک کھلی ہوتی ہیں، تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. نظر جھکائیے، حیا ہوگی اس میں. 3 چیزیں ملتی ہیں نظریں جھکانے سے. نمبر 1، ایمان کی مٹھاس، ثابت قدمی اور بلند ہمتی، یعنی اگر نیکی کا کوئی کام کر رہے ہیں نا تو اس میں آپ جم جائیں گے انشاءاللہ. اور تیسری چیز، دل کا نور اور ایمان ملتا ہے. اور یہ اگر آپ اس کا ریفرنس نوٹ کرنا چاہیں تو یہ فتاوی ابن تیمیہ میں یہ بات آپ کو مل سکتی ہے، اور یہ حدیث میں بھی موجود ہے. تو پتہ کیا چلا کہ عورتوں کو نظریں جھکانی چاہیے. آپ کو پتہ کہ آج شتر بے مہار کی طرح شیطان باہر پھر رہا ہے، اور عورتوں اور مردوں کے آپس کے افیئرس کتنے چل گئے. بعض بازاروں میں جانے کی وجہ سے افیئرس شروع ہو جاتے ہیں. کسی ایک دکاندار سے بات ہوگی، کسی ایک باجی کہتے ہیں نام سے، پتہ نہیں وہ تعلقات کس حد تک کے بننے لگتے ہیں، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ نگاہ کو نگاہ کے پیچھے مت لگاؤ، یعنی ایک عورت دکھی ہے تب اس کو بار بار نہ دیکھو، بے شک پہلی نظر تجھے معاف ہے جبکہ دوسری تیرے خلاف دلیل ہوگی. اب ظالم کہتے ہیں پہلی ہی نہیں واپس آئی، تو پھر یہ ظلم ہے نا. آج ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ریئلی میں دیکھتی ہوں گورے آپ کو نہیں دیکھیں گے، اپنے لوگ دیکھیں گے. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ ثواب سمجھ کے نہیں چھوڑتے، ان کو ایٹیکیٹ سکھائے گئے. ہم تو کسی کی پرائیویسی کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. ہم تو ٹکر ٹکر اس کو جب تک اگلا نظروں سے نہ جدا ہو جائے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو یہ چیز ہمارے اسلام میں ہے. اس پہ میں پھر آپ ماؤں کو کہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے. 4-5 سال کا بچہ، بیٹا آپ کو بھی دیکھے گا نا، تو بیٹا آنکھیں نیچی کرو. میں تو اکثر جہاں جاتی ہوں، مجھے اس عمر کے بچے ویسے ہی بڑے پیارے لگتے ہیں، بیٹیاں بیٹے دونوں کیوٹ سے ہوتے ہیں، 7-8-9 سال، بڑی معصوم عمر ہے. تو وہ اپنی ماں کو، ظاہر ہے وہ قد چھوٹا ہے تو ماں کو یوں دیکھتے نا، تو میں ایسے پیار سے ایسے کر دوں گی، بیٹا ماما کو اوپر نہیں دیکھتے، ایسے جھکائیں. اپنے بچوں کی ٹریننگ کریں. آپ کے گھر میں بہنیں ہیں، بچی ہیں نا، تو بیٹوں کو بھی بتائیں، بیٹا بہن ہے تو نیچے دیکھتے ہیں، ماما کو بھی نہیں دیکھتے. کسی جب گھر میں اپنی ماں بہن کو بچہ مرد کھول کے نظریں نہیں دیکھے گا تو باہر کہاں دیکھے گا. پر مسئلہ کیا ہے کہ نیچے نظریں کر کے پھر ہم اسکرین تو دیکھ نہیں سکتے جس پہ سارا وقت نظریں ہوتی ہیں. میں دیکھتی ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اتنی بدل گئی ہیں. میں اپنے تبلیغ کے سفر کے دوران دیکھوں، ایسے 10-15 سال پہلے جب میں یہ بات کہتی تھی تو آسان لگتی تھی، لوگ مان لیں گے، اچھا جی مرد کو آیا تو نظر جھکائی. اب لوگ کہیں گے لوگ کمپیوٹر پہ نظر پڑتی ہے، وہ تو ہم جی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہم تو علماء کرام کی دیکھتے ہیں. یعنی دن بدن فتنے اتنے بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہمیں اب اس چیز کا فرق نہیں محسوس ہوتا کہ ایک عورت غیر مرد کو یا ایک مرد غیر عورت کو دیکھے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ جو حضرت علی والی حدیث تھی نا، اس کا ریفرنس نوٹ کر لیں تو یہ مسند احمد کی روایت ہے. ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پوری کی پوری پردہ ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکنے لگتا ہے. تو عورت کا معاملہ، اس لیے بھی یہ ترمذی کی روایت موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اگلے اصول پہ چلتے ہیں، اور وہ کیا ہے، بہت اہم بات ہے، خاص طور پہ پاکستان میں جا کے شاپنگ کرتے ہیں. یہاں تو آپ کو ایک ٹپیکل انداز ہے، قیمتیں لگی ہوئی ہیں، رکھی ہوئی ہیں، نہ لینا دینا پڑتا ہے، کاؤنٹر پہ جاتے ہیں نا. گناہ یہاں بھی بہت ہیں اور طرح کے، لیکن اپنے ملکوں میں جا کر جب کرتے ہیں تو ایک چوتھا اصول بنائیے، اور وہ کیا ہے، دکاندار سے بے باکانہ گفتگو نہیں کرنی، بے تکلفی کا اظہار نہیں، نرم، دل کو لبھانے والا انداز، دل پھیک انداز، ادائیں دکھانے والا انداز، اور چہرے کے آنگل زاویے بنانے اور اس طرح کی باتیں کہ دکاندار ذرا سا باتوں میں لگے اور سستی چیز دے دے، اور دے دے نہ اور کر لے. یقین کرے میں کڑوا جملہ بولنے لگی ہوں کہ بعض بیویاں اپنے مردوں سے کڑوی بات کرتی ہیں اور دکانداروں سے میٹھی باتیں کرتی ہیں. مرد سے تو ہمیشہ کہتی تم نے دیا کیا اور لیا کیا، اور وہ بڑے بھائی جان ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. یہ انداز بہت ناپسندیدہ ہے. فطری انداز میں بات کریں، कुरान में आता है कि मर्द से औरत बात कर सकती है, लेकिन नरम अंदाज ना हो, लोच ना हो, गलत बात ना हो, कम से कम ना हो। अल्लाह के नबी की बीवियों को जब अल्लाह ताला ने कुरान में ये बात कह दी कि फला तहदान बिल कौली फयतम लजीफी कल बिही मरत वकुल न कौलम मारूफा, तुम नरम लहजे से बात ना किया करो वरना जिसके दिल में कोई बीमारी होगी तो वो लालच करने लगेगा। हाँ कायदे के मुताबिक बात करो, यानी ये नहीं कि अब औरत बात ही नहीं करे, कर सकती है, घर आए हुए मर्द से भी कर सकती है, बाहर भी कर सकती है, मगर तरीके से। ये सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर 32 थी। तो बात बेतकल्फी की ना करें, ये तो आप अपने ऊपर ले लीजिए। फिर उसके बाद आप देखिए कि अगला असूल अपने लिए ये मुकरर कर लीजिए कि दुकानदार का सामना सही अंदाज से कीजिए। यानी बाज जो है वो बिल्कुल सामने आमने खड़े होकर बात करती हैं, या जैसे आप कह लें कि फैशन के नाम पे अगर दुपट्टा भी गले में डाला हुआ है, चीज का रेट करते हुए काउंटर पे झुकती हैं, बाद वह चीज दिखा दें ले ले। अब कपड़े इतने ढीले होते हैं, अल्लाह रहम करे कि उसके जिस्म का एक एक अंग दिख रहा होता है, और बाज दुकानदार जानबूझ के हरकतें ऐसी करते करवाते देखेंगे, अल्लाह ताला हमें माफ करे। बेपर्दगी के साथ जाके अपना जिस्म दिखाकर और उसके अंदर से अपनी अदाएं दिखाने वाले कईयों के घर तोड़ते हैं, वो फिर अपनी बीवियों को तो ऐसा नहीं देखते। अब जिस स्टाइल में बिगड़े हुए माशरे की औरतें अगर बाहर आ रही हैं, और एक दुकानदार मिसाल है कि चीजें भी कोई ऐसी ही बेचता है जो औरतों के इस्तेमाल की, आप बताइए उसको अपनी सीधी सादी बीवी कैसे अच्छी लगेगी घर जाकर। अल्लाह ताला ने सूरत नूर आयत 19 में फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बुना अन तशीअ अल-फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम ही यह है कि ईमानदारों में फहाशी फैलाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि उनके अंदर फहाशी हो, लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा, तो इनकी दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता और तुम नहीं जानते। तो लिहाजा अपनी अदाओं को भी ठीक करना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फहाशी किसी भी चीज़ यानी किसी इंसान की कदरों कीमत कम कर देती है, जबकि हया किसी की कदर को बढ़ाती है। तो ये जो बेहयाइयाँ होती हैं ये फ़ायदा नहीं देती, ये नुकसान देती हैं। और ये रिवायत जो आखिरी बोली है ये तिरमिज़ी की रिवायत थी। फिर इसके बाद छठी चीज़ जो बहुत अहम है, मुनासिब वक्त का इंतखाब कीजिए, सूटेबल वक्त पे जाइए। ऐसे वक्त में मत जाइए जब दुकानदार अकेला हो, कोई भी नहीं है, और आप अकेली जाके अंदर ज्वेलरी देख रही हैं और पहन के देख रही हैं और चूड़ी पहना दें और ये कर दें वो कर दें। बाज़ दफ़ा बिल्कुल सुबह के वक्त में दुकानें खाली होती हैं, बाज़ दफ़ा लेट नाइट जब दुकानें बंद हो रही हैं, आप सिर्फ आप हैं, इससे बहुत फितने होते हैं। बाज़ दफ़ा अगवा हो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, गलत चीज़ें होती हैं, और तन्हाई में एक मर्द के साथ आप दुकान पे जाके भौतो कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी का वो कॉल याद रखिए कि आपने फरमाया कि कोई आदमी किसी औरत के साथ तन्हाई में लैदा ना हो, मगर ये कि उसका महरम उसके साथ हो। तो अब आजकल तो बड़े बड़े स्टोर्स बन गए हैं, दुकानें अंदर शीशे की एसी लगी हुई हैं, बाज़ दफ़ा खौफ होता है अंदर जाते हुए, आपको क्या पता कि अगले की क्या नीयत है। और ये जो रिवायत है ये बुखारी की रिवायत है। तो लिहाजा अकेले में ऐसे वक्त में नहीं जाना चाहिए जिससे कि अगले का साथ कोई नक्स हो। फिर उसके बाद ये है अगली चीज अपने लिए ये रख लीजिए, और वो क्या है कि जब ज़ाहिर पर्दे में जा रहे हैं तो बिला जरूरत ज़ेबो ज़ीनत भी नहीं करनी। मसलन अगर आपको बाद में कहीं शादी में जाना है, कुछ कहीं जाना है, दावत में जाना है, आप बाजार में जाइए तो सिंपल जाइए। और एक मैं आपको सिंपल असूल बताऊं, बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं ट्रेवलिंग के बारे में कि आप थकते नहीं हैं। कई दफ़ा ऐसे होते हैं 8-8 घंटे की फ्लाइट के बाद सीधा एयरपोर्ट से जाना पड़ता है। अभी रास्ते में मेरी बात हो रही थी एक दर्स के लिए, तो वो मैं उनको बता रही थी कोई कोई ऐसा टाइम सेट कर रहे थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप रख लें, एयरपोर्ट से सीधा आ जाएंगे। ये सब कैसे होता है, यानी आपकी ट्रैवलिंग या आपकी शॉपिंग इजी कैसे होती है जब आप भी कुछ सिंपल कपड़ों में जाते हैं, सिंपल ढीले ढाले कॉटन के कपड़ों में आप पहन के अब आया जाते हैं। बाजार में आपको गर्मी नहीं लगेगी, घबराहट नहीं होगी, चीजें नहीं चुभेंगी। आप जब भी शॉपिंग करें वापस घर जाए, कहीं भी जाए, इवन जैसे लोग बाहर जाते हैं ना, बस अभी भी हम लोग आए हैं, बहुत अंदर की बातें होती हैं, लेकिन मिसाल है कि अगर इस वक्त हमने ज्वेलरी भी पहनी हुई है, मैं बाहर नहीं पहनती। मैं अक्सर कहीं जाके अपना बाया उतार के अगर मुझे स्कार्फ ठीक करना है, अगर मैंने कोई अंगूठी पहननी है, मैंने चूड़ी पहन, मैं वहां जाके पहनती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि रास्ता लंबा है, मैं जाने से पहले वो सब उतार के पर्स में रख के बैठती हूँ। सफर में मैं ऐसे बैठती हूँ जैसे मेरे से ज्यादा लेयर कोई नहीं, वरना गम क्या पड़ा होगा, कपड़े चुभ रहे हैं, पसीना आ जाएगा। आप एक जोड़ा 10 दफा पहन ले कोई नहीं खराब होता, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहनना है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, बाजार जाते वक्त अपने आप को इस हाल हुलिये में रखें कि ना आपको थकन हो ना तकलीफ हो, और जल्दी से जल्दी आपको वहां से निकलना इजी लगे, और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि इससे आपके सर में दर्द नहीं होगा। बात ऊंची एड़ी वाला जूता पहन के गई, घर आई तो टांग दुख रही है, तो भी पहन के क्यों गई थी आप? ये तो बेवकूफी की बात है कि इतनी हील पहन के आप शॉपिंग कर रही हैं, थोड़ी देर में फिर मूड खराब होने लगता है। तो बहरहाल ये टिप्स हैं कि अपने आप को बहुत ज्यादा रिलैक्स मूड में रखिए। अगली बात जो बहुत अहम है, और वो क्या है कि बाजार अगर कोई जाए तो बाजार में ऊंची आवाज से बात ना करें। यकीन करें, हम खुद भी आजमा चुके होंगे इस चीज को कि आप खड़े हैं, पीछे से ठा 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 आवाजों की आवाज आती, पीछे देखते हैं 5-6 लड़कियां हंस रही हैं, बोल रही हैं, मजाक कर रही हैं, किसी को बुंदे पिना रही हैं, अब सारा बाजार उनको देख रहा है। सच बताइए, क्या मर्दों को हम खुद फितनों में नहीं डालते? मैं तो कभी अपने बाप भाई बेटे मियाँ को कभी ना रिकमेंड करूं कोई ऐसी दुकान खोले जहां औरतें आती हैं। आजकल हमारे इवन कपड़ों की दुकानें क्यों ना हो, ज्वेलरी की दुकानें क्यों ना हो, क्योंकि वहां ऐसी औरतें आती हैं जो जिनकी अदाएं होती हैं। फिर वो देखते हैं, देखिए ना, वो कोई इतने नमाजी रोजेदार तो मर्द भी नहीं होते, कोई इतना दीन को समझने वाले तो वो लोग भी नहीं है। अब ऐसी आवाजें ऊंची करने वाली और खड़ी बातें कर रही हैं, और उसको बुला उसको दिखा तो ये पसंदीदा। कभी आप ज्वेलर्स की दुकान पे जाके देखा करें, यकीन करें, ऐसे औरतें जेवर पहन पहन के और शीशों में उनको भी दिखा रही होती है खुद भी, और वो मशवरे दे रहे होते हैं, भाजी बड़ा अच्छा लग रहा है, भाई आप कौन होते हैं अच्छा बताने वाले, चूड़ियां पहनते हैं ये, वो कहते नहीं आपको ये बड़ा सजता है। एक और जुमला आपने बहुत सुना होगा, आपके लिए इतने का, भाई हमारे लिए क्यों इतने का, हम तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ये सारे फितने अपने आप को मुश्किल में डालने के होते हैं। आहिस्ता बात करें, कम बात करें, अगर आपके साथ मर्द है आप उसको बता दें कि ये चीज निकलवा दें, ये पसंद करें, फिर तो आपको मजा आए ना शॉपिंग का, कि एक तो आप घर वालों की पसंद से चीजें ले रहे हैं, दूसरी है। फिर नेक्स्ट एक और अपने लिए टिप रखिएगा कि मुनासिब चीजें, मुनासिब लिबास खरीदिए, यानी कीमत वाइज बहुत महंगी या बहुत नुमाया चीज ना खरीदें, उससे भी दुकानदारों के भावताव भी बिगड़ते हैं। और दूसरी ये बात होती है कि ऐसी महंगी चीजें खरीदने से मर्दों पे बोझ भी आता है, और उन्होंने उन्हीं चीजों में से कमाना होता है। मेकअप की चीजें हैं, कपड़े हैं, आजकल हर चीज में मुसीबत ये हो गया कि ब्रांडेड आ गए, और ये महंगी ये सस्ती वो है करके, और वहां लिपस्टिकें लगा लगा के देख रही हैं, नेल पॉलिशें लगा के देख रही हैं। देखिए, ये चीजें करनी है तो बेहतर है फिर आप किसी औरतों के स्टोर से ले लें, लेकिन मर्दों की दुकान पे बैठकर इस किस्म के काम करने कराने, ये इंतहाई कम जर्फी की बात बनती है। तो जो चीज देखे ऐसी चीज खरीदे जो मुनासिब हो, पहन के आप बिल्कुल वो दुम छल्ला ही ना लगने लगे और दूसरे आपको ना देखें। एक हदीस बहुत अहम है, मैं जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि बाजार की बात हो रही है और फिर हम ये बात ना करें ये हमारी अपने ऊपर ज्यादती होगी। आपने फरमाया, कहले जहन्नम के दो गिरोह ऐसे हैं कि जिन्हें मैंने नहीं देखा, एक तो वो जिनके हाथ में घोड़े की दुम की तरह लाठियां होंगी जिनसे वो लोगों को मारेंगे, जालिम हुक्मरानों की तरफ इशारा, और दूसरा वो औरतें, गौर से सुनने की बात है, वो औरतें जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, इनके कपड़े यानी बारीक होंगे या तंग होंगे, वो मर्दों की अपनी तरफ मायल करने वाली होंगी और खुद भी मर्दों की तरफ मायल होने वाली होंगी, इनके सर बख्ती ऊंटों की कोहानों की तरह होंगे, और ना तो ये जन्नत की खुशबू पा सकेंगी और ना ही इस ना तो जन्नत में दाखिल होंगी ना उसकी खुशबू पा सकेंगी, हालांकि इसकी खुशबू कितनी दूर से आ रही होगी। ये अल्लाह के नबी की प्यारी जुबान के अल्फाज हैं, हवाला नोट कर लीजिए, सही मुस्लिम की रिवायत है। अब आप मुझे बताइए, सिर्फ इस एक हदीस पे आप अपने आज बाजारों को देख लें, आज आप अपने शादी हालों को देख लें। मैं कहती हूँ आज सिर्फ दो चीजें हम मुसलमान कंट्रोल कर लेना तो हमारी उम्मत पे आए हुए ये जो अजाब के कोड़े बरस रहे ना, इंशाल्लाह इसमें 50% कमी तो होगी। एक आज हमारे बाजार और एक हमारी शादी का है। बाजारों में वो कुछ खरीदती हैं और इस फर्क से मिटा के बदल के कि ये चीजें देखनी कैसे किधर है, और शादी हालों में वो दिखाते हैं। मैं अपना एक तजुर्बा बयान कर सकती हूँ आपको। किसी एक हमारी सिस्टर है, किसी बाहर की मुल्क की बात है, कोई पाकिस्तान भी नहीं था, तो वो मैं उनके साथ कहीं थी तो कहीं से गुजरे तो कहने लगी कि उस्ताजा आप थोड़ा सा माइंड ना करें, तो इधर से मैं कभी आती नहीं हूँ, मैंने अपनी बेटी का एक ड्रेस ठीक करना दिया हुआ है तो मैं ले लूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, दर्ज तो हो गया, अब तो घर ही जा रहे हैं, मुझे कोई इतराज नहीं। गाड़ी रोकी, कहने लगी आप गाड़ी में बैठेंगी या मेरे साथ चलेंगी क्या? मैंने कहा कोई हरज नहीं है, जैसे आप कहें। कहती चले। वो एक शादी के कपड़ों की दुकान थी, वल्ला ही मैं कहती हूँ कि उन्होंने या तो मेरे ऊपर एहसान किया मुझे वहां ले जाकर, जो दर्द मैंने वहां महसूस किया, या फिर वाकई मेरे साथ जुल्म किया। मैंने मेरी गुनाहगार आंखों ने वहां जो हाल और मंजर देखे, वो कह लीजिए कि जो मेरे वेडिंग ड्रेसेस है या पार्टी ड्रेसेस वाली कोई दुकान थी, उन्होंने जवान मर्द रखे हुए जो आपको डील करते हैं, हर कस्टमर के साथ वो एक लड़के को कर देते हैं, कुछ लड़कियां भी थी लड़के भी थी, अल्लाह की कसम बूढ़े बाप इतनी लंबी दाढ़ी के साथ अपनी बेटियों को लेकर आए हुए थे, और उनकी गुफ्तगू से समझ आ रहा था कि बेटे या किसी भाई की शादी है, तो ये एक दो बहनें मिलके आई हैं जिन्होंने अपनी सारों ने कपड़े पहने और एक पहन के पीछे पूरी कमर नंगी, और बाप देख रहा है और कह रहा है ये अच्छा लगेगा ये ले लेते हैं। यानी ये दो बहनें साथ थीं और दो घर में होंगी, और अब्बा जी वो कपड़े पे करने वाले थे और वो बेटियों ने भाई की शादी पे पहन के दिखाने थे। और जो वो औरतें कपड़े पहन के जो वो ड्रेसिंग वाले लड़कों को दिखा रही थी, ये देखो और ये तंग और ये खुला है, अल्लाह की कसम 15, वो उनका कोई ड्रेस के आने में देर थी तो वहां खड़े थे हम बस, और कुछ कर नहीं रहते। तो उन्होंने कहा भाई हूं तो लेके जाती हूँ 15 को मिनट में, और वो पूरी सिर्फ कपड़ों की दुकान थी और उसमें कोई और चीज नहीं थी, लेकिन मुझे लगे कि आज जमीन फटेगी और मैं इसमें डूब के मर जाऊंगी। मैंने हया को तार तार होते देखा। आप बिलीव कर सकते हैं, 1,000, 1,500, 1,800 पाउंड का एक एक जोड़ा। दो कहती ये तो ये सेल पे है, ये आम जोड़ा तो 3,000 पाउंड का होता है, घर तो 3 साल ना चला, जोड़ा आपने 3,000 पाउंड का बना दिया। मुझे बताइए क्या हम अल्लाह को गुस्सा नहीं दिला रहे आज हम औरतों को? मेरी बातें कड़वी, मैंने इन मौजूद पे कभी बात नहीं की, लेकिन आज मेरे पास मौजू ही वो है क्योंकि मेरा फर्ज बनता है। ठंडे दिल से घर जाके बैठ के सोचे, औरतों में भी बैठे हैं ना तो हया आती है अगर जिस्म का कुछ हिस्सा खुले। कहां बाजारों में निकलकर हाथों में हाथ डालकर अल्लाह के नबी कहते हैं कपड़े पहन के नंगी है, और अल्लाह माफ करे जो गर्मियों में हमारी बेगमात निकलती हैं पतले चिकन के और लॉन के कपड़े पहनकर, ड्राइवर भी देख देख के मुस्कुराते हैं। और आज जो ब्रांडेड है जिसमें कपड़ा कुछ जिस्म का अंग झुकता ही नहीं है, ऊंची कमीजें आ गई बेवकूफों की तरह हमने काट के ऊंची कर ली, लंबी आई तो हमने अकलमंदों की तरह लंबी की। मैं कहती हूँ जिसने लंबी कमीज निकाली वो फैशन, वो अकलमंद था कुछ साल तो ये जान रही। अब तो मुझे गम पड़ा रहता है कि ये पतली कमीजें और छोटी कमीजें, आप मुझे बताएं जिस्म का कौन सा हिस्सा छुपता है? कभी तो हम अपनी शक्ल से तो सोचे कि ये जोड़ा जो पहनना है मैंने, इसको पहन के मेरा बाप भी मुझे देखेगा, मेरे बट्स दिखेंगे, मेरी थाइस दिखेंगी, कमर दिखेगी, गला खुलेगा, बाजू तो है ही नहीं। और लोग कहते हैं कपड़ों के बाजू नहीं होते, वो कहते हैं कहेंगे तो लगवा देंगे। और कोई जोड़ा 25, 30, 40 हजार से कम का नहीं मिलेगा आपको शादी में पहनने वाला। तो अब जिसने इतनी जो मेहनत की तो फिर उसने तो मेहनत करके दिखानी है ना। आप कभी सोचें कि आज कितनी मुसलमानों पे मुसीबतें हैं ना। आप कहते हैं जी आज के दौर पे फलां जगह जंगे हैं वो है, कभी हम सोचते हैं कि शायद ये किसी हमारे इज्तमाई गुनाह की सजा है? इस वक्त इज्तमाई तौबा की जरूरत है, और खास तौर पर बाजार और शॉपिंग, ये वो मौजू है कि जिसको मैं सोचती हूँ कि अपने आप को जितना हम खवातीन मैनेज करेंगी उतना ही ये बेहतर होगा। मर्दों की हम सुनती कहाँ हैं? मर्द कहते हैं लाएं तो ये पहनती नहीं है। मर्द तो यकीन करें आज हमारी नजरों में बुद्धू हैं, बेवकूफ हैं, इनको तो खरीदना ही नहीं आता, और ये बड़े बड़े प्रिंट ले आते हैं, और ये तो जी आंटियों वाले कपड़े हैं। वो साथ चले जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई गैरतमंद मर्द अपनी बीवी बहन को शॉपिंग करता देख सके, जिस स्टाइल से खवातीन मोस्टली करती हैं। और रह गई बात मॉडर्न फैशनेबल रोशन ख्याल तरक्की याफ्ता दिखना, ऐसे कपड़े पहनना ऐसी आराइश करना, तो किसको दिखा रहे हैं? आपको दुनिया सारी कह दे यू आर अल्ट्रा मॉड, और आपका रब आपको कहता है कि तबरुजल तबरुजल जाहिली या तेलूला, कौन सा सर्टिफिकेट बड़ा? अल्लाह आपको जाहिल कह रहा है तो दुनिया आपको मॉडर्न कह रही है। वो औरतें खुशकिस्मत हैं जिनको लोग दकियानुसी के गैर तहजीब याजत हैं जो भी हैं, लेकिन वो अल्लाह के हुक्मों को मानती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक और असूल, 10वां असूल 9 बता दिए, 10वां नोट कीजिए कि जेवरात और चूड़ियां, यानी ज्वेलरी की जब कोई काम है तो उनका नाप देते हुए एहतियात कीजिए। बाज औरतें अपना हाथ गैर मर्द के हाथ में दे देती हैं, ये चूड़ी पहना दें, ये कर ले, अंगूठी छल्ला, और खास तौर पे ज्वेलर्स की या फिर दूसरी दुकानों पे आप देखिए कि कैसे मजे ले लेकर वो पहना रहे होते हैं, हाथ दबाते हैं औरतों के। एक औरत का हाथ टच कर दे ना एक गैर मर्द को, तो जलता हुआ अंगारा हाथ में रखना उससे कम नुकसानदेह जितना किसी मर्द का औरत से हाथ लगना है। ये चीज आप नोट करके देखिए। फिर आप देखिए अगला इशू जो बहुत ही काबिले हया है, लेकिन मैं क्या करूं ये बातें तो करनी पड़ेंगी, दर्जियों को नाप देना। इसके बारे में जरा सी शरई हदूद तो जान लीजिए। बास खवातीन अल्लाह उनको वाकई हिदायत दे और हमें उनकी हिदायत का जरिया बना दे कि दर्जियों को नाप देने में इस बेबाकी से अपने जाहिर के नाप दे रहे हैं तो आप ऊपर चादर दुपट्टा और निकाब तो नहीं किए होंगे ना। इस तरह जिस्म का एक एक अंग होता है कि दर्जी तक झुकता है। मैंने जो अभी आपको तजुर्बा बताया, मैंने अपनी आंखों से कुछ चीजें देखी, मैं यहां नहीं बता सकती कि आखिर वो लड़का उसका फीता छोड़ के चला गया कि बाजी मैं नहीं ले सकता नाप। अल्लाह की कसम, हया आती है देखकर कि इस तरह अपना जिस्म खोल खोल के, और एक औरत ने पहन के कहती ये क्या किया तुमने, तो अब वो बंदा ना खिसियाना सा होके तो शर्मिंदा होके चला गया, यानी उसके ख्याल में ये जोड़ा खुला सी दिया मेरा कि सांस मेरा ठीक निकल रहा है। ये खवातीन के मुजाहरे आपको दिख सकते हैं, जहां आप बड़ी दुकान देखेंगे वहां आपको इस तरह की और भी चीजें दिखेंगी, हराम है। आप देखिए कि एक फर्क किस बात का है, दो बोल ही तो बोल के निकाह पढ़वाते हैं ना, उस बोल के बगैर एक लड़की चली जाए किसी लड़के के पास कोई जाने देता है? लिबरल से लिबरल बाप भी अपनी बेटी को बगैर निकाह के बोल पढ़े नहीं जाने देगा। लेकिन आज कहां बाजारों के नाम पे हमारी हया खत्म हो रही है। अगर आपने सिलवाने हैं औरतों से सिलाए, मेरा तो दिल नहीं मानता। कभी मुझे कोई दूसरा भी कोई कपड़ा बनाकर दे तो मैं उन्हें कहती मेरा हाथ सेट हुआ है, एक दर्जन है, अल्लाह जानता है जब भी जाते हैं उसी से कपड़े लेने हैं, अपने घर वालों को भी पता है कि मैं उसी से ही पहनती हूँ। मुझे खुद शर्म आती है दर्जी के सिले हुए कपड़े पहनते हैं कि उसको तो पता चल जाएगा कि ये जिस्म का नाप है और ये वो है। हर औरत, उसको नहीं पता किसने पहनने, लेकिन मर्दों को पता होता है कि ये औरतों का जिस्म कैसे होता है। यानी ये हया की बात है, मैं कोई फतवे नहीं दे रही आपको, सिर्फ अपने अंदर इस हया को रखिए। अपने कपड़े दे दीजिए, नाप दे दें, लेकिन कभी जिस्म का नाप ना दें। और कहाँ, आप देखिए आप खुद उनको दावते जिना दे रहे हैं। आप खुद सोचे, कुछ चीजें जहन में आ जाती हैं कि मैं यहां बता नहीं सकती कि दर्जी फिर किस तरह, वो भी एक एक प्लेट का नाप लेते हैं क्योंकि उनको मजा आ रहा होता है। उनको सब पता होता है क्या नाप है, कहाँ प्लेट्स डालने, कहाँ से कमीज छोटी बड़ी करनी, लेकिन वो नाप लेने में उनको मजा आ रहा होता है। और मैंने माओं को देखा अपनी 10-8 साल की जवान होती बच्चियों को सामने खड़ा कर देती हैं, इसका नाप ले लें मास्टर साहब, क्यों मास्टर साहब इंसान नहीं है? तो ऐसी चीजों से अपने आप को बचिए। नबी सल्लम ने फरमाया, बेशक लोगों को जो तमाम अंबिया के कलाम में से मिला, यानी सारे नबियों का ये एक मजमुई मैसेज है, उसमें एक ये भी है कि जब तू बेहया और बेशरम हो जाए तो जो मर्जी करता रहे, फाइज लम तस्तही फसना माशेता, जब तेरे अंदर से हया निकल गई तो जो मर्जी कर ले, तेरी मर्जी है। ये बुखारी की रिवायत है, हवाला लिखना है तो लिख लीजिए, 6120 नंबर की हदीस है, आप जाके खुद भी ये पढ़ सकते हैं। ये चीजें आज हम देखते नहीं, बात नहीं करते, हम सोचते नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग, बाजार के नाते से साइड पे बात तो आई है लेकिन डायरेक्टली एक असूल बना के बात नहीं हुई कि जब चले तो आपके चलने की आवाज ना आए। ऊंची एड़ी की जूती, हील पहनी हुई, टुक टुक चलना, जिस्म पे कोई जेवर ऐसा है जो बज रहा है, घुंघरू पहने हुए हैं और आवाजें आती हैं, ये चीज भी औरत के लिए पसंदीदा नहीं। सूरत नूर में इसके बारे में अल्लाह ताला ने बराह रास्त हुक्म दिया है कि जमीन पैसे ना चलो के वला या दरिब ना बियार जुली हिन्ना, पाँव मार के ना चलो कि जैसे चलने की आवाज आती है, और कुछ जूतियां होती हैं उनकी तो आवाजें आती हैं। इससे भी अपने आप को बचना चाहिए, बचाना चाहिए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इशारों किनायों से बातें करना, जुमानी बातें ना करें, ये नेक्स्ट रसूल बनाए अपने लिए। किसी भी जगह दुकान पे बात करते वक्त अगर आपको हल्का सा अंदाजा हो जाए कि दुकानदार जरा सा कोई आपसे बेतकल्लुफ हो रहा है, उसकी चीज छोड़ के वहां से उठ जाए, मत लें। चीज आपको फिर कहीं मिल जाएगी लेकिन वो इज्जत नहीं मिलेगी, और खास तौर पे जब वो अकेली लड़कियों को देखते हैं और साथ कोई मर्द भी नहीं है तो वो पहले ही असूल टूट गया कि आप बगैर महरमों के चले गए तो परेशान नहीं हो। फिर नेक्स्ट थिंग बहुत अहम है, हदीस इसमें बड़ी स्ट्रांग है इसलिए इसको गौर से सुने, कि खुशबू लगा कर बाजार ना जाइए। जाना पड़े, मजबूरी में जाना पड़े, खुशबू ना लगाएं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो औरत खुशबू लगाए फिर गैर मर्दों के पास से गुजरे, इनको उसकी खुशबू पहुंचे तो वो जानिया है। ये रिवायत ले लीजिए, निसाई की है। एक और रिवायत भी सुनाती हूँ, वो भी निसाई की है। आपने नमाज के लिए मस्जिद जाने वाली औरत को तलकीन फरमाई कि अगर इसने खुशबू लगा रखी हो तो गुसल करके खुशबू का असर खत्म कर दे। आपने फरमाया, जब औरत मस्जिद जाने का इरादा करे, देखिए बाजार नहीं मस्जिद, इवन मस्जिद में कोई खराब जहन से तो नहीं जाएगा ना, कहा जाए तो भी खुशबू के असरात खत्म करने के लिए गुसल करे जैसे जुनाबत से गुसल किया जाता है। तो आप देखिए कि कहाँ खुशबुओं के भभोके हो, आप शादी हॉल में घुसे बैठे हो, एकदम खुशबू आती है, पता चलता है कोई नई परी अंदर दाखिल हुई है। ये खुशबू आपको तक इंडिकेटर होता है, खुशबू से तो मिजाज ही बदल जाता है। तो इस तरह की खुशबू बाहर मर्दों में औरत को जानी पसंदीदा नहीं। हदीस में आता है, औरत रंग लगा सकती है लेकिन खुशबू दबी होनी चाहिए, मर्द खुशबू लगा सकता है लेकिन रंग दबा होना चाहिए। यानी कि मर्द सुर्खी बॉर्डर लगा के आ जाए और औरतें खुशबू लगाएं, ऑपोजिट हो गया आज तो हालात, दोनों तरफ है। इसमें परफ्यूम्स अगर ऐसे हैं जो बहुत उड़ते हैं, ये सिर्फ आप अपने कमरे में लगा सकती हैं या घर में अगर आप अकेली अपने हस्बैंड के साथ हैं, गैर मर्दों के बीच में इस तरह की खुशबू लगाना अपने आप को और दूसरे को मुश्किल में करना है। इसमें एक और पॉइंट नोट कीजिए, खुशबू चेक करने के लिए जिस्म पे लगा लेते हैं, गए परफ्यूम देख रहे हैं, छिड़क रहे हैं, और ये कब इत्तेफाक होता है आपको, जब आप एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री शॉप से गुजरते हैं, वो बाजियां लेके खड़ी होती हैं, ठहरे एक्सक्यूज मी इट्स फ्री, फ्री पे फ्री है हम नहीं लगा सकते, और कई लोग कहते हैं चलो चख लो कोई, अच्छा फ्री में मान लेते हैं, तो खुशबू खरीदने के वक्त भी अपने कपड़ों को जिस्म को ना लगाएं, क्योंकि जब वहां से निकलेंगी तो बाहर दूसरों को आएगी, और इस तरह से बचना चाहिए। फिर अगली बात यह है कि बिला वजह बाजार में कहीं बैठे मत। जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि दही बल्ले खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, ये खानी है तो घर में खाइए, काम कीजिए और घर जाइए। इतना 4-5 घंटे का प्लान आप बना के क्यों गए हैं? आप एक गए, 1 घंटे में काम करके वापस आइए, जाके चाय पीजिए। बाजारों में, दुकानों पे, थड़ों पे बैठना, बातें करना, खुशगपियां करना, ये इंतहाई नापसंदीदा बात है। क्यों? अगर मौत आ गई तो क्या होगा? आप देखिए कि मौत तो किसी वक्त भी आ सकती है ना, तो लेकिन हम कितना लोगों से डरते हैं। आज सुबह एक बड़ी तकलीफ की बात सुनी, हमारी एक सिस्टर है बहुत अच्छी नॉर्वे में, तो वो अपने भाई की बेटी की शादी के लिए गई पाकिस्तान, और वहां कल शादी हुई है और आज सुबह उठे हैं तो उसी भाई की डेथ हो गई है। बेटी को रुख्सत किया और बाप चला गया। अब मैं सोच रही थी, मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में, गुमान तो ये कि बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन शादी के मौके पर वो कितना लोगों से डरे होंगे, बातें ना हो, लोग ना करें, उसकी खुशी उसकी खुशी, उनको पता कि कल की रात मेरी कब्र में। हम शादियों के नाम पे किसी को नाराज नहीं कर सकते, फलां नाराज फलां रूठ जाएगा, तो आप बताइए कि अल्लाह के सामने जाएंगे तो क्या होगा? तो लिहाजा ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर इसी तरह एक और टिप अपने लिए नोट कीजिए कि कोई ऐसी दुकान है, कोई ऐसी जगह है जहां कोई नहीं है, और कोई दुकानदार आपसे कहता है कि भाई जी आप अंदर चले जाएं, मैं आप किसी को भेजता हूँ, अच्छा आप आ जाएं बैठ जाएं, तो आप बिल्कुल ना जाएं। बाज दफा ट्रायल रूम है, क्योंकि हमारे अपने मुल्कों में तो कई और किस्म के भी फितने मौजूद हैं, सिक्योरिटी की तो बात नहीं है। तो कोई ऐसी जगह जहां आपको जरा सा भी शक होगा कि आपकी इज्जत को खतरा हो सकता है, तो वो ना करें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई आदमी तन्हाई में एक औरत के साथ होगा तो तीसरा उनमें शैतान होगा। अगला मौजू बहुत अहम, इंतहाई अहम बात, कि बाजार की चकाचौंध में नमाजों को जाया ना करें। कितनी नमाजें जाया होती हैं ये आप सब जानते हैं, और असर की नमाज जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसकी नमाज असर फौत हो गई उसके माल, घर, बीवी, बच्चे सब तबाह हो गए, यानी बैंक करप्सी किसी की फाइल हो जाए ना, उसके सारे बच्चे मर जाए, उसकी बीवी फौत हो जाए, उसका नुकसान कम है उस शख्स की निस्बत जिसकी नमाज असर जाया हो। और यकीन करें कि अक्सर बाजार में असर की नमाज जाया होती है, घर जाते हैं तो मगरिबी याद निकल रही होती है। आप बताइए, आप बेटी की शादी करने पाकिस्तान गए, इतना पैसा लगाकर दे दलाकर वहां कितनी नमाजें फौत करके आप आए, शादी कैसे निभे? फिर सजा मिलती है? हम समझते कोई नहीं है सजा में मिलती है, अल्लाह की कसम वो बहाना कोई भी बन जाता है, अल्लाह जानता है। तो नमाजों को जाया करना, अपने बेटी बेटियों की शादी को, जिंदगी को, और खुद को अगर अपने लिए भी शॉपिंग कर रहे हैं, खतरे में डालना, जिन कपड़ों को पहनना है बाद में और उसके लिए नमाजें छोड़ी हुई हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपको उससे सवाब क्या मिलेगा और उससे बरकत क्या मिलेगी। फिर अगली बात क्या कि अगर बाजार जाना भी है तो फजूल खर्ची से बचे, लिस्ट बनाकर जाए, घर से लिस्ट बनाएं कि मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई रियली नीड, और उससे अलावा कुछ ना रखें। गैर जरूरी चीजें, ये सस्ती है, ये सेल की है, ये महंगी है, ये दोबारा नहीं मिलनी, ये बार बार नहीं आनी, ये इंतहाई नापसंदीदा बात है। जरूरत की चीज लीजिए, क्योंकि अल्लाह सुबहान तआला फरमाते इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वाना शयातीनी वकाना शैतानु लिरब्बिही कफूरा। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 27 की आयत है, 27 आयत है सूरह बनी इसराइल की, कि बेशक फजूल खर्च जो हैं वो शैतान के भाई हैं, और शैतान तो अपने रब का इनकारी है। अब हम चाह सकते हैं कि हमारे भाई शैतान हो या हम शैतान की बहन हो, तो फजूल खर्ची से बचिए, अल्लाह को पसंदीदा नहीं है। मर्द बेचारे मेहनत से कमाते हैं और हम लौटाते हैं, कहते हैं क्या करें, और सबसे ज्यादा फजूल खर्ची हम शादियों की शॉपिंग में करते हैं, इज इट ट्रू? और अल्लाह जानते हैं आधी से ज्यादा चीजें कोई नहीं पसंद आती लड़कियों को। बेटे की शादी कर रहे हैं ना, उस बहू को के खुद 2 जोड़े 4 6 10 जो बनाने खुद बना लो, 7 चलो बना लो, अपनी पसंद से बना लो, पैसे दे लो, वो पहन लेगी, वरना बाद में होता क्या, वो बहुएं पहनती नहीं है, सासे लड़ाई करती हैं, पहने नहीं, वो कहती है आंटियों वाले कपड़े हैं मैंने नहीं पहने, लाखों लाखों रुपए के कपड़े बने होते नहीं पसंद आते, तो लिहाजा कम बनाइए। और फिर अगली बात इसी से मिलती जुलती है लेकिन अलग भी है, कि देखा देखी शॉपिंग ना करें, फुला दे रहा है तो मैं भी ले लूं, उसने खरीदी तो मैं भी ले लूं, मेरी नंद ने ली है तो मेरे घर भी जरूर आएगी, और मेरी देवरानी के पास है तो ये भी है, कभी दूसरों के लिए ना लें, अपने लिए लें। फिर खास तौर पे एक और चीज नोट करें, बाज दफा खास मौके की शॉपिंग, मसलन ईद उल फितर है, ईद उल अजहा है, अब आपको पता है कि ईद कब आनी है, रमजान के रोजे जाया करने जरूरी है ईद की तैयारी में, और फिर रोजा रख के बाजारों के चक्कर लगाने, और बाज रोजा छोड़ती हैं कि आज मैंने ईद की तैयारी करनी है, और इधर ज़िलहज में आपको पता है कि 10 दिन शुरू के कितने कीमती हैं, वो तो रमजान के उन 10 रातों से भी अहम है, वल फज्र वल याल नशर, तो ईद की तैयारियां पहले कर लें अगर आपने जरूर करनी है, अगर करना चाहें, इन दिनों में जाया ना करें, अपने आप को पीछे रखें, आप देखेंगे इससे फायदा होगा। और मैं आपको इन सारी चीजों के साथ, यानी ये चीजें जो हम कर करा रहे हैं, मैं इसको एक इबादत बनाने का तरीका भी बता सकती हूँ। वल्लाह ही हमारा दीन इतना खूबसूरत दीन है कि कभी आपको बाजार जाना पड़े तो सबसे अहम बात यह है जो मैं पहले आपसे पूछती हूँ कि क्या बाजार में दाखिल होने की कोई दुआ है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु यही वयुमीतु वहुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। कितनी प्यारी दुआ है। नबी सल्लम ने फरमाया कि जो भी बाजार में दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़े, खामोशी चाहिए। तर्जमा सुनिएगा, अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी के लिए बादशाहत है और इसी के लिए तमाम तारीफ है। वो जिंदा करता है और मारता है, वो जिंदा है और कभी नहीं मरेगा, और इसके हाथ में तमाम भलाइयां हैं और वो हर चीज पर कादिर है। ये दुआ आपको दुआओं की किताब में मिल सकती है। नासिरुद्दीन अल्बानी ने इस हदीस को सही कहा है, हसन का है। फायदा इसका क्या है? अल्लाह ताला इस बंदे के नामे अमाल में 10 लाख नेकियां लिखते हैं और इसकी 10 लाख गलतियां मुआफ फरमा देते हैं और इसके 10 लाख दर्जे बुलंद कर देते हैं। चले जो गुनाह हमसे हो जाते हैं बाजार में जाने के साथ, उसकी कुछ कंपनसेशन तो हो जाएगी। और आप देखिए कि बाजार तो अल्लाह से गाफिल करने वाली जगह है, अगर ये कलिमात पड़े होंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमत से हमारे अंदर कमी बेशी जो होगी वो माफ हो जाएगी। ये तो चंद चीजें थी जो है हो गई। अब एक छोटी सी चीज जो ऑल्टरनेट है, बहुत खूबसूरत बात है, जो वेस्ट में रहने वाली सिस्टर्स के लिए बहुत फायदे की होगी अगर आप मेरी इस बात पे गौर करें। मैं खुद भी इस पे अमल करती हूँ जब मुझे कभी मौका मिले। और वो क्या है कि कहीं जाकर शॉपिंग करने की निस्बत आप नेट से शॉपिंग कर लें। बिलीव मी, आज के दौर में इतना आसान है ये चीज़ कि आप बाजार गए गए थके, इतनी बेपर्दगी हुई, इतने लोगों से बातें की, अब एक चीज़ दिखाई दूसरी दिखाई, नहीं पसंद आई छोड़ के आए, बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, ले आए तो वापस करने फिर बाद में मुश्किल लगेगी। इंटरनेट से जो आज के दौर में शॉपिंग के तौर तरीके हैं, घर बैठे आप अपनी कोच पे बैठे हैं, आपके पास वक्त है आधा घंटा, आप कहते हैं कोई किसी के गिफ्ट्स खरीदने हैं, कोई चीज़ लेनी, आप नेट से शॉपिंग कर लें। 10 दफा भी एक चीज देखकर लेकर आप पीछे डाल दें, बास्केट में डाल दें, बाद में पे करें, कोई आपको नहीं रोकेगा। सबसे बड़ी बात है बेपर्दगी नहीं, बेहयाई नहीं, और सोच समझ के लेंगे। बाजार में जाके तो माइंड ट्रैप हो जाता है। और अब मेरा ख्याल है हमारे अपने मुल्क में भी ये चीजें आम हो रही हैं, यहां वालों को तो यही करना चाहिए। हर स्टोर जिधर आप दुनिया में फिरते होंगे ना, उसका ऑनलाइन स्टोर भी होता है, आपको पता होगा। ईबे है और दूसरे चंद बड़े बड़े नाम है, जैसे क्या नाम है, अमेजोन है। मुझे खुद इत्तेफाक की जरूरत भी नहीं पड़ती इतनी, लेकिन मैंने ये चीज अपने हस्बैंड से सीखी है। जब आज से 15-16 साल पहले मैं अमेरिका गई शादी हुई, हमारे कल्चर में तो शादी के बाद शॉपिंग वैसे ही बड़ी जरूरी होती है, अब घर बनाना है ये करना, तो मैंने इनसे कभी कुछ कहना कि कुछ लेना है तो कहते थे क्या चाहिए इधर आओ, तो मैं समझ नहीं आ रही थी कि हमें तो गाड़ी की तरफ जाना चाहिए बाहर, ये मुझे अपने कंप्यूटर रूम में बुला रहे हैं, भाई क्यों खैरियत? कहते आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए ना। मैंने कहा अच्छा अगर मैं ये बोल दूं ना देखेंगे, तो कहते इसके अंदर आपको नहीं चाहिए, ये देख के जरूरत कौन सी पैदा होती है। और आपको पता है कि नेट से सस्ती मिलती हैं चीजें, उनकी कॉस्ट कम होती है। तो बहरहाल इस पे मैंने सोचा है बल्कि कि इसके बारे में एक इंशाल्लाह अलग सेशन दूंगी उन सिस्टर्स को जिनको थोड़ा नेट का यूज करना आता है। इस पे तो पूरा टिप देने की जरूरत है कि किसको कार्ड यूज करना आता है नहीं आता, और घर के मर्दों बच्चों को ये सब कुछ आ रहा होता है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम अपना शरा सदर करें, और मैं तो ये सोचती ना कि मेरी बेपर्दगी नहीं होगी। फिर एक छोटी सी और चीज जो वेस्ट में शॉपिंग का मैंने खुद अपने हस्बैंड के साथ देखी है, जो मैंने शुरू में जिक्र भी किया आपको, कि आप शॉपिंग करने कब जाएं। मसलन जैसे अमेरिका में ना वॉलमार्ट स्टोर्स हैं जो 24 आवर खुले रहते हैं, कुछ स्टोर्स ऐसे हैं, जैसे लंदन में हम रहे तो वहाँ एजरा स्टोर ऐसा था 24 आवर खुला होता है। हम लोग कब जाते हैं? जब रश नहीं होता। बल्कि बाज स्टोर्स ऐसे हैं कि रात के खास वक्त के बाद वहाँ सिर्फ सेल्फ चेकआउट होता है, आप घर से निकलने से आने तक किसी मर्द के माथे नहीं लगते। द बेस्ट वे हम लोग शॉपिंग करते, जाहिर है कि हर एक करता है, कहते तो जब भी कभी मैं इनके साथ गई हूँ तो हम लोग जाते ही ऐसे वक्त में कि जब रश नहीं होता, मैं चीज़ें ले रही हूँ, पसंद कर रही हूँ, चेकआउट पे ये करके ला के गाड़ी में रख दी, खत्म हो गया। तो जितना भी आप अपने आप को बचाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बचाएगा। आप बताइए आप मुझसे कितना को नाराज है, क्योंकि ये मौजू मुझे पता है औरतों को खुश नहीं करता। जरूरत थी इन बातों की, मैंने गिन सकती हूँ पिछले सालों में मैंने गिन उंगलियों पे गिन के शायद 2-4 बार इस मौजू पे बात की है, लेकिन आज मैंने सोचा इसको रिकॉर्डिंग में रखते हैं क्योंकि ये बहुत सारों की जरूरत है। और मेरा अगर ये दर्स आज का अगर हम पाकिस्तान में इसकी 1000 कापियां बांटे तो शायद कुछ लोगों को तो फायदा होगा ना। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नक अंत तवाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन आमीन।
या अय्युहन نبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما।